लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। सीरिया में 8 वर्षों से जारी युद्ध में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध को समाप्त करने के महत्वपूर्ण पहलों में से एक मध्यस्थता सम्मेलन है। सीरिया के लिए नए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में बुधवार को काम शुरू हो गया। सीरियाई सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधि वर्ष 2011 के बाद पहली बार आमने सामने बैठकर देश के भविष्य पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तुर्की के इस्तांबुल शहर में आयोजित 6th इस्तांबुल मध्यस्थता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूएन महासचिव ने कहा कि सीरिया में परस्पर विरोधी पक्षों का आमने सामने बैठकर वार्ता में शामिल होना मध्यस्थता की सफलता को दर्शाता है। उनकी उम्मीद है कि इससे सभी सीरियाई नागरिकों की स्वेच्छा से अपने देश सुरक्षित लौटने की संभावना को बल मिलेगा। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
तुर्की के इस्तांबुल शहर में आयोजित 6th इस्तांबुल मध्यस्थता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने मध्यस्थता और संवाद के सकारात्मक नतीजों को साझा करते हुए बताया,
As the tragedy in Syria grins on for an 8th year, with civilians paying the highest price,
यूएन महासचिव कह रहे थे कि सीरिया में 8 साल से जारी क्रूर गृह युद्ध के बाद सीरियाई नेताओं की जिनेवा में बातचीत का होना प्रगति का परिचायक है। ये स्पष्टता से हिंसक संघर्षों के राजनीतिक समाधान तलाश करने की अहमियत को दर्शाता है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश के शब्द।
फिलहाल 1.25 करोड़ से ज्यादा सीरियाई नागरिकों को मदद की आवश्यकता है। 66 लाख लोग घरेलू तौर पर विस्थापित हैं और 30 लाख उन इलाकों में फंसे हैं जहां लड़ाई की वजह से पहुंचना मुश्किल बना हुआ है। वर्ष 2011 के बाद से अब तक 56 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। सीरिया के लिए यूएन के विशेष दूत गेयर पेडरसन ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य वर्षों से पीड़ा झेल रहे नागरिकों को राहत प्रदान करना है।
विश्व की आधी से ज्यादा आबादी यानी 3 अरब 90 करोड़ लोग अब शहरों में रहते हैं और वर्ष 2050 तक यह संख्या दोगुनी होने की संभावना है। बढ़ते शहरीकरण से नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं, लेकिन शहर भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने और टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका भी निभा सकते हैं। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के अवसर पर यही रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। विश्व शहर दिवस पर यूएन के सदस्य देशों की नगरपालिकाओं और शहरी जनता से एक साथ मिलकर काम करने की अपील की जाती है, ताकि टिकाऊ रणनीतियां अमल में लाई जाएं और शहरों में रूपांतरकारी बदलाव लाना संभव हो। ज्यादा जानकारी दे रही हैं यूएन संवाददाता शिवानी काला।
इस वर्ष विश्व शहर दिवस की थीम चेंजिंग द वर्ल्ड इनोवेशंस एंड बेटर लाइफ फॉर फ्यूचर जेनरेशंस रखी गई है, जिसका उद्देश्य इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन के जरिए दुनिया में बदलाव लाना और भावी पीढ़ियों के लिए शहरों में जीवन बेहतर बनाना है। टिकाऊ शहरों के निर्माण में तकनीक और युवाओं की भूमिका को अहम बताया गया है। यूनेस्को ने अपने ग्लोबल क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 66 नए शहरों को शामिल करने की घोषणा की है, जिसके बाद अब इस नेटवर्क में कुल 246 शहर हो गए हैं। सूची में शामिल नए शहरों में मेरिडा और क्वेरेतारो, लाहौर, मुंबई, कार्लसरूहे, पोट्सडम, सेन होसे, वेलिंगटन प्रमुख हैं। इस नेटवर्क में उन शहरों को जोड़ा जाता है जहां विकास उनकी सृजनात्मकता जैसे संगीत, कला, डिजाइन, सिनेमा, साहित्य, डिजिटल कला या पाक कला पर आधारित होता है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि शहरों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय जो निर्णय आने वाले दशकों में लिए जाएंगे उनका निर्णायक प्रभाव कार्बन उत्सर्जन पर पड़ेगा। निस्संदेह जलवायु परिवर्तन से लड़ाई शहरों में ही जीती या हारी जाएगी। बिजली चालित सार्वजनिक परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और बेहतर कचरा प्रबंधन को अपनाकर शहर इनोवेशन यानी नवप्रवर्तन और सृजनात्मकता का केंद्र बने हैं और युवा आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं।
जिनेवा में 3 दिवसीय हाई माउंटेन सुमिट के दौरान संयुक्त राष्ट्र की मौसम विज्ञान संस्था और साझेदार संगठनों ने जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने और जल उपलब्धता का संकट बढ़ने की आशंका के मद्देनजर 31 अक्टूबर गुरुवार को एक नई पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की निगरानी और पूर्वानुमान तकनीकों को बेहतर बनाने पर प्रयास केंद्रित किए जाएंगे। इस बैठक में यूएन की मौसम विज्ञान संस्था ने जल प्रणाली में बढ़ोतरी को रोकने की पुकार लगाई क्योंकि इससे क्रायोस्फेयर के समक्ष नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। भारत को भी इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंजल प्रकाश ने हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की ओर से जारी की गई नई रिपोर्ट को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर अंजल प्रकाश ने सचिन गौड़ के साथ खास बातचीत में IPCC की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
यहाँ पे दो चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो कि जो ओशियन सिस्टम है हमारा, वो ओशियन सिस्टम बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है जो कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण, और जो हमारा जो पोल्यूशन लेवल है इसके कारण जो कार्बन सिंक कर रहा है वो ओशियन सिस्टम उसको कैच करता है। दूसरी बात की जो हमारा जो ग्लेशियर्स है, जो हमारा क्रायोस्फीयर है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो क्रायोस्फीयर भी ये जो गर्मियों के कारण वो पिघलने लगा है, बर्फ पिघलने लगी है। ये जो बर्फ है अपने सालों से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स में से वो फॉर्म हुआ है और ये मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। और इस पिघलने से क्या होता है कि जो पानी का जो बहाव है नदियों में वो बहुत चेंज करेगा। तो आप समझिए कि गर्मियों के समय में जितना पानी आना चाहिए उससे दुगना तिगना पानी आएगा और उससे फिर समुद्र जो है उसकी सतह बढ़ जाएगी और उससे फिर बहुत सारे जो एरियाज हैं जो कि लो लाइंग एरियाज हैं वो डूब में आ जाते हैं। तो ये दोनों सिस्टम्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, एंड ये रिपोर्ट जो है वो रीएम्फेसाइज करता है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन दोनों सिस्टम्स को हम प्रोटेक्ट करें।
अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत में किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं?
जी, भारत के संदर्भ में दो बातें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारा जो तटीय क्षेत्र है वो करीब 7,500 किलोमीटर का विस्तार है और ये तटीय क्षेत्र जिसमें जो लोग रहते हैं वो अबाउट 280 मिलियन लोग जो है वो तटीय क्षेत्र में रहते हैं जो कि इमीडिएटली अफेक्टेड होने वाले हैं कुछ भी जो चेंजेस होते हैं जिस सिस्टम में। सबसे पहले तो ये बात है कि जो साइक्लोन है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ने वाली है। दूसरी बात की फिश प्रोडक्शन पे असर होने वाला है। तीसरी बात की इससे जो सेलिनिटी है पानी में जो क्षारीय क्षमता है पानी, खासकर ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी है, फिर इसके स्रोत में क्षारीय क्षमता बढ़ने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि पीने का पानी को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सी का जो है वो बहाव अंदर के अंदर तरफ आने लगता है। अब चले हम हिमालय की तरह, हिमालय जो है हमारा सिस्टम है वहां पे भी आप जानते हैं कि 15 से ज्यादा जो स्टेट्स हैं वो हिमालयन स्टेट्स हैं हमारे हैं जिसमें बहुत सारे लोग जो रहते हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं जिससे है पानी और इकोसिस्टम सर्विसेज जो है हमारे जो वातावरण जो उन्हें सर्विसेज देती है जैसे कि जंगल, जल, जमीन है, ये तीनों इससे इफेक्टेड होने वाले हैं और ये प्रॉब्लम जो है हम दे रहे हैं कि इंडिया के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रहेगी।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे महबूब खान। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आराधना आराधना बलिदान चढ़ाने मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को अखंड मानव विकास और जेल प्रेरिताई शीर्षक से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों का वैटिकन में हार्दिक स्वागत किया। संत पापा ने कहा कि कारावासों में उत्पीड़न का सामना कर रहे कैदी भाइयों और बहनों की दुखद वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही कैथोलिक कलीसिया ने कारावासों में प्रेरिताई के लिए एक विशिष्ट समिति की स्थापना की थी। तथापि उन्होंने कहा यह कार्य केवल उक्त समिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सबसे कमजोर और असहाय लोगों के पक्ष में येसु मसीह से प्राप्त मिशन है, जिसके प्रति संपूर्ण कलीसिया को निष्ठावान रहना है ताकि ईश्वर की दया प्रदर्शित की जा सके। उन्होंने कहा जेलों की स्थिति हमारी सामाजिक वास्तविकता का प्रतिबिंब है और हमारे स्वार्थ और उदासीनता का एक परिणाम है जो फेंक देने की संस्कृति से जुड़ा है। उन्होंने कहा कई बार समाज सुरक्षा की तलाश में कानूनी और अमानवीय फैसलों के माध्यम से सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध कार्य करने वालों को सामुदायिक जीवन की समस्या मानकर अलगाव और कारावास में समाधान ढूंढता है। दुर्भाग्यवश उन्होंने कहा सभी नागरिकों को समान रूप से विकास के अवसर प्रदान करने की अपेक्षा अपराधियों को घेरने के लिए इन स्थानों का निर्माण कर दिया जाता है तथा उन्हें शिक्षित करने के बजाय उनका दमन करना अधिक आसान जान पड़ता है। उन्होंने कहा कि ख्रिस्तीय होने के नाते हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि इन भाइयों और बहनों ने क्यों अपराध किया, क्या उन्हें समाज में न्याय मिला या नहीं। उन्होंने कहा कि इन सवालों का उत्तर दिए बिना हम क्यों इन व्यक्तियों के कंधों पर सजा का भार डाल देते हैं तथा उन्हें फिर अपनी गलती दोहराने का मौका देते हैं। उन सब लोगों के प्रति संत पापा ने धन्यवाद ज्ञापित किया जो कैदियों की सेवा में संलग्न है और कहा कि ये लोग अपनी सेवा द्वारा ख्रीस्त का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रोटेक्ट ऑल लाइफ अर्थात सब जीवन की रक्षा करो संत पापा फ्रांसिस की जापान प्रेरितिक यात्रा का विषय और प्रमुख शब्द है। 23 से 26 नवंबर तक संत पापा फ्रांसिस जापान की यात्रा कर रहे हैं, जिसके कथानक गीत की प्रकाशना जापान के कैथोलिक धर्माध्यक्षों द्वारा कर दी गई है। प्रोटेक्ट ऑल लाइफ वाक्यांश सन 2015 में पर्यावरण की सुरक्षा पर प्रकाशित संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लाउदातो सी की अंतिम प्रार्थना से लिया गया है। जापान प्रेरितिक यात्रा का कथानक गीत जून इओने तथा अमेदेउस कोडे आई ने मिलकर रचा है, जिसका प्रदर्शन ड्रीमर्स यूनियन नामक गायन मंडली द्वारा किया गया था। इस गीत को संत पापा फ्रांसिस की यात्रा से संलग्न जापानी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर पाया जा सकता है। कथानक गीत को जारी करते हुए जापानी कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हम में से प्रत्येक ने जीवन का वरदान पाया है, हम सब ईश प्रतिरूप में सृजित प्राणी हैं तथा सभी लोगों के साथ मिलकर हम अनंत धाम तक अपनी तीर्थ यात्रा में जुटे हैं। उन्होंने लिखा सृष्टि की रचना तथा इसका रखरखाव ईश्वर का अपूर्व कार्य है, जैसा कि नबी ईसाया के 45वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है ईश्वर ने पृथ्वी गढ़कर उसकी नींव सुदृढ़ कर दी है, उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे बल्कि इसलिए कि लोग उस पर निवास करें। अस्तु, धर्माध्यक्षों ने कहा, सब जीवन की रक्षा करने के लिए हमें न केवल प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना चाहिए बल्कि पर्यावरण का भी सम्मान करना चाहिए। जापान के धर्माधीक्षों ने इस बात पर भी गहन चिंता व्यक्त की कि हमारा आम घर मानव जाति द्वारा रौंदा जा रहा है और दुनिया के सभी परित्यक्त लोगों के संकट के कारण दर्द से करहा रहा है। धर्माधीक्षों ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि आज जापान अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों जैसे मुद्दों के अलावा जीवन और शांति से संबंधित समस्याओं से घिरा है। प्राकृतिक तबाही और परमाणु संयंत्र दुर्घटनाओं से उबरना एक निरंतर समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जापान की कलीसिया जीवन की रक्षा और मानव जीवन से संबंधित विभिन्न मुद्दों का प्रत्युत्तर देने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है और उसकी आशा है कि संत पापा फ्रांसिस की यात्रा से उसे इस दिशा में प्रोत्साहन मिले। संत पापा फ्रांसिस ने कहा है कि विश्वास के मार्ग पर अग्रसर होकर ही हम शुद्ध किए जा सकते हैं। शुक्रवार 8 नवंबर को एक ट्वीट संदेश में कैथोलिक धर्मानुयायियों से अपने विश्वास में सुदृढ़ होने का आग्रह कर संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, विश्वास एक तीर्थ यात्रा की मांग करता है, वह बाहर निकलने की मांग करता है। जीवन की इसी तीर्थ यात्रा के दौरान हम शुद्ध होते हैं। प्रायः यह तीर्थ यात्रा चढ़ाई वाली कठिन तीर्थ यात्रा होती है क्योंकि यह ऊपर की ओर हमें अग्रसर करती है। वैटिकन स्थित प्रेरितिक लाइब्रेरी में लैटिन पश्चिम में पूर्व के ईसाई शीर्षक से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर पूर्वी रीति की कलीसियाओं के लिए गठित परम धर्म पीठीय समिति के अध्यक्ष कार्डिनल लियोनार्डो सांद्री ने कहा कि जो लोग राजनैतिक, आर्थिक और कलीसियाई क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें जन कल्याण की बात सोचना चाहिए। कार्डिनल सांद्री ने कहा कि पूर्व और पश्चिम के ख्रिस्तियों के बीच आरंभ ही से एक समृद्ध संवाद बरकरार रहा है जिसके अनगिनत साक्ष्य हमें पूर्वी रीति की कलीसिया और लातिनी कलीसिया के संग्रहालयों में मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यूसेफ साइमन असेमनी के व्यक्तित्व में पूर्व और पश्चिम की कलीसियाओं के बीच हम सांस्कृतिक और कलीसियाई एकता का साक्ष्य पाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके कृतित्व रोम और लेबनान के ख्रिस्तियों को एक सूत्र में बांधते तथा उन्हें जन कल्याण हेतु कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि यूसेफ साइमन असेमनी का जन्म 27 जुलाई 1687 को लेबनान के हासरून में हुआ था तथा 13 जनवरी 1768 को रोम में उनका निधन हो गया था। असेमनी एक लाइब्रेरियन, लेबनानी प्राच्यविद और मारोनी रीति के कैथोलिक धर्माध्यक्ष थे। उनकी प्रज्ञा और प्रयासों के लिए उन्हें द ग्रेट असेमनी उपनाम दिया गया था। कार्डिनल सांद्री ने कहा कि प्रज्ञा संपन्न होते हुए भी असेमनी एक अत्यंत विनीत व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को केंद्र में न रखकर जन कल्याण हेतु प्रतिदिन ज्ञानार्जन कर लोगों के बीच मैत्री और सद्भाव की खोज की। उन्होंने कहा कि असेमनी की शिक्षा आज के प्रज्ञाविदों और राजनैतिक, आर्थिक एवं कलीसियाई क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार लोगों का आह्वान करती है कि वे लोगों की भलाई के बारे में सोचें। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।